Vasudevaya. Sri Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj ki virachit anuvad, Bengali or Sanskrit, say Angrezi, or Tatparya, Sri Srimad, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki dwara, Madhya Lila Adhyay Unis Shlok Sankhya, 51 Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beej Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Beej Anubad Sare Jeev Apne Apne Karmon Ke Anusa Samuche Brahmand Me Brahman Rahe Inme Se Kuch कुछ ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडल मंडलों को ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिससे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के का अवसर मिलता है कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है।
तात्पर्य जब हम ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा आशय समूचे ब्रह्मांड से या करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह से होता है। सारे ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह होते हैं और इन ग्रहों में जल स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव सभी जगह है और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है तो वह कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो कृष्ण उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यदि कोई जीव संयोगवश या भाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संपर्क में आता है और इस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है तो हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों पर अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं और जो ही जीव भगवत कृपा की कामना करता है त्यों ही भगवान जलंकी उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु गुणों का संरक्षण पाता है। उसे भीतर से कृष्ण सहायता देते हैं और बाहर से गुरु दोनों ही निष्ठावान जीव को इस भवबंधन से मुक्त होने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। कोई किस तरह इतना भाग्यवान बन सकता है इसे हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख सकते हैं। वे अपने पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। यद्यपि वे प्रतिष्ठित कुल में नहीं जन्मे थे किंतु सौभाग्यवश उनकी माता कुछ वैष्णवों की सेवा करती थी। जब ये वैष्णव चातुर्मास में विश्राम कर रहे थे तब बालक नारद को उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वैष्णव दयावश इस बालक को अपना शेष बचा भोजन दे दिया करते थे। उनकी सेवा करने तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से बालक नारद मुनि उन वैष्णवों का कृपा पात्र बन गया और वैष्णवों की अज्ञात कृपा से वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन गए। अगले जन्म में वह बालक नारद मुनि बना जो वैष्णवों में सर्वोच्च तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु एवं वैष्णवों के आचार्य थे। नारद मुनि के पद चिन्हों पर चलकर यह कृष्ण भावनात्मक आंदोलन हर व्यक्ति को कृष्ण के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करके मानवता की सेवा कर रहा है। जो कोई भाग्यशाली होता है वह इस आंदोलन से तुरंत जुड़ जाता है, तब कृष्ण की कृपा से उसका जीवन सफल हो जाता है। हर व्यक्ति में सुप्त कृष्ण भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति के लिए कृष्ण के लिए प्रेम होता है और अच्छे भक्तों की संगति में वह प्रेम प्रकट हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, इत्य सिद्धे कृष्ण भक्ते साध्य कहो नौत श्रवणादि सूत्र चित्ते कर्मयोग। हरे के भीतर कृष्ण के प्रति सुप्त भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति करने से, उनके सदुपदेश सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत हो उठता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण कृपा बीज
ब्रह्मांड भ्रमित कनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसका अर्थ स्पष्ट है, आप सब समझ सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कनो भाग्यवान जीव, इस भ्रमण में भ्रमण करते हैं असंख्य जीव, उसमें एक भाग्यशाली हो सकते और भाग्यशाली होने से गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते। भक्ति लता बीज का मतलब वो हृदय में वो प्रेरणा भक्ति करना उदाहरणा मिलती है। तो यदि आप इस वचन समझ सकते हैं वो आपका भाग्य है, क्योंकि भौतिक संसार में ब्रह्मांड में अधिकांश जीव मनुष्य के रूप धारण नहीं करते। एक जीव अभी मेरे आसपास भ्रमण करते मक्खी के रूप में, तो वो भी जीव है और आप सब जीव है। लेकिन वो जीव जो अभी उस शरीर में है यही सब वचन समझ नहीं सकते। तो क्योंकि सत्संग में है भाग्यशाली है, तो एक मनुष्य कैसे इतना भाग्यशाली होते हैं कि गुरु और कृष्ण से भक्ति लता बीज मिलते, तो वो कैसे भाग्यवान होते। बहुत जीव है मनुष्य के रूप में, अभी चला गया मैं श्राप नहीं दिया था तो फिर भी चला गया तो कैसे एक व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने में रुचि मिलते और दूसरा व्यक्ति रुचि नहीं लेते, ऐसा होता है क्यों? सब जीव का मूल स्वभाव है कृष्ण दास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो एक मनुष्य जीवन में ये सब वचन समझना संभव है, परंतु एक मनुष्य वो बात सुनने से कृष्ण कथा सुनने से उत्साही होते हैं और दूसरा व्यक्ति उत्साही नहीं होते, ऐसे होते हैं क्यों? एक भाग्यवान है दूसरा भाग्यवान नहीं है, तो इस भाग्य कैसे मिलते? इस प्रकार तो यदि निम्न जीव जातियों में यदि एक जीव मक्खी के रूप में सत्संग में उपस्थित होते हैं तो बात जो हो रही है तो नहीं समझते, तो फिर भी क्योंकि वो मक्खी का कान में से कृष्ण कथा कृष्ण नाम आते हैं, वो मक्खी तो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं, तो फिर भी वो कृष्ण वो पवित्र शब्द उसके उसकी चेतना में आते हैं। और इस प्रकार अज्ञात सुकृति मिलती है। सुकृति का मतलब पुण्य, अज्ञात का मतलब वो तो नहीं जानते, कैसे मालूम हो सकते जो जीव जो मक्खी का शरीर में, तो कैसे मालूम सकते कि मैं पवित्र कृष्ण नाम सुनता हूँ, तो समझ नहीं सकते। फिर भी वो कृष्ण नाम का प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनके गुरु के आदेश के अनुसार दूसरों को भी उपदेश दिया, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी थार सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु सबको बताए नाचो गाओ कृष्ण संकीर्तन करो नाम संकीर्तन करो, और नाम उपदेश करके सब जीव का उद्धार करो। एक बार हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु से नामाचार्य पदवी मिले, एक बार हरिदास ठाकुर जो मुसलमान के कुल में जन्म लिए थे, तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य पद दिए थे। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में भक्ति प्रचार किया है, विशेषकर हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम खलाओ नाश्चैव 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 गतिरन्यथा, बृहन नारदीय पुराण का वचन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार किया है कि हरे नाम हरि का नाम के बिना, हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना तीन बार बोलते, कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है इस कलयुग में परम गति प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार विशेष का हरि नाम करना है, और हरिदास ठाकुर जो सबसे नीच जात में जन्म ग्रहण किए हैं उनको हरि नाम पद दिया है। तो इसमें से चैतन्य महाप्रभु सिखाया कि कृष्ण भक्ति में जात का विचार नहीं होते, सामाजिक विचार में उच्च जाति नीच जाति वो सब है, भगवान का विचार में ऐसा नहीं है, सब जीव है, सब भगवान के अंश है। तो हरिदास ठाकुर एक बार चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि आप जीव सब जीव का उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार में आए हैं, और आप सब मनुष्यों को उपदेश देते हरि नाम करना, हरि नाम से सबका उद्धार होगा, परंतु मनुष्यों के अलावा मनुष्य आकृति धारण करने वाले के अलावा और बहुत 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 जीव है, मनुष्य संख्या बहुत कम है, और अमानुष की संख्या बहुत ज्यादा होते हैं। तो हरिदास ठाकुर एक आदर्श वैष्णव थे और इसलिए वे केवल स्वयं की भक्ति प्रगति के बारे में नहीं सोचे, वे सब बद्ध जीवों का उद्धार चाहते हैं। इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि वो सब जीव जो अमानव के रूप में है उनका उद्धार कैसे होगा। पशु पक्षी कीट आदि बोले थे ना फारे, जो पशु पक्षी कीट इत्यादि रूप में है तो नाम नहीं बोल सकते। हरि नाम चैतन्य महाप्रभु बोले कि हरि नाम सुन ले थार ओ उधारे, थार ओ थारे। चैतन्य महाप्रभु बोले कि ओ हरि नाम सुनने से उनका उद्धार हो जाएगा। तो मक्खी के रूप में, कुत्ते के रूप में, पशु पक्षी कीट जो भी रूप में हो, यदि किसी जीव हरि नाम सुनते हैं या कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो कुछ नहीं जानते कि ये कृष्ण प्रसाद है, ये हरि नाम है, परंतु उससे अज्ञात सुकृति होती है। वे नहीं जानते, अज्ञात है, फिर भी सुकृति होती है। तो सुकृति अलग अलग प्रकार होती है। सामान्यतः सुकृति शब्द से हम समझते पुण्य कर्म, भूखियों को खिलाना और रोगियों के लिए हॉस्पिटल बनाना, ये सब पुण्य कर्म है। उससे क्या मिलते हैं, जो पुण्य कर्मी है वह तो इस जन्म में या अगले जन्मों में अवसर मिलते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो उसको पुण्य कर्म बोलते हैं, सुकृति। एक और प्रकार सुकृति होती है। सुकृति का मतलब, सु का मतलब अच्छा और कृति जो किया है कार्य, तो अच्छा काम करना, सरल भाषा में सुकृति। तो भोगोन्मुखी सुकृति होती है, अर्थात पुण्य कर्म जिससे हम बाद में अवसर मिलेंगे भौतिक इंद्रिय सुख भोगना। तो पुण्य कर्म करने से लोग चाहते स्वर्ग जाना, देवलोक जाना, और इस दुनिया में अगले जन्म में तो अमीर होना, गरीब नहीं होना। तो ये सब पुण्य कर्म का फल है और उसको भोगोन्मुखी सुकृति बोलते हैं। फिर मोक्षोन्मुखी सुकृति होती है। लोग जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं वे भी सुकृति करते हैं जो अनुकूल होते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, और इसलिए वे वेदांत श्रवण करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। ये सब अनुकूल है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो सुकृति है जिससे भक्ति हृदय में प्रकट होगी। सबके हृदय में भक्ति है। इस तात्पर्य में इस वचन आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। वो कृष्ण प्रेम सबका सब जीव का स्वभाव है। वो जीव जो मक्की का शरीर में है वो वास्तव में कृष्ण के शुद्ध भक्त है, परंतु दुष्कृति हो, दुष्कर्म करने से, पाप कर्म करने से ऐसा शरीर मिल गया है। तो ऐसा पापमय शरीर में भी यदि कृष्ण नाम सुनते हैं या यदि कुछ प्रसाद खाते हैं तो अज्ञात सुकृति मिलते। भक्तिमय सुकृति क्या है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, कृष्ण नाम कीर्तन करना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नो मुख्य प्रकार की भक्ति कार्य है जिनमें श्रवण और कीर्तन मुख्य है। तो मनुष्य जाति के नीच जातियों में भी यदि कोई व्यक्ति कोई जीव प्रसाद लेते हैं, कृष्ण नाम सुनते हैं, किसी ना किसी प्रकार यदि भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। शास्त्र में एक कहानी है कि एक मूषिका, एक चूहा बहुत भूख लग रहा था और कृष्ण भगवान का मंदिर में एक दिया था जिसमें वो घी था, तो वो घी खाने के लिए वो चूहा आया था और वो दीप से उसका मूछ तो जल गया और ऐसे बहुत दर्द लगा के तो ऐसे जंपिंग किया है और ऐसे ही मार गया था। तो भगवान के सामने क्योंकि वो जला हुआ तो आरती अर्पण करने जैसे था और भगवान के धाम गया था। ऐसा ही संभव है भगवान की कृपा से, अज्ञात सुकृति। तो ऐसे मत करो, अगर आपका वो घी लगाना आपके मुंह पर डांसिंग करना भगवान के सामने, वो भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की आरती यथा विधि करनी चाहिए, उससे सुकृति होती है, भक्ति सुकृति। विशेषकर भक्ति भक्ति सुकृति हम मिलते हैं यदि हम भक्ति भाव से भक्ति करते हैं। तो भक्ति का मतलब भक्ति भाव है नहीं, वो भक्ति कर्म मिश्रित कामनाएं से भी हो सकते। जैसे लोग जो बहुत सारे लोग द्वारका जाते हैं नहीं, और भगवान द्वारकाधीश वहाँ भगवान द्वारकाधीश का दर्शन मिलते हैं, तो सब लोग जो द्वारकाधीश के पास जाते हैं तो द्वारकाधीश भगवान से शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करते जिससे उनकी भौतिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो उसमें भक्ति भी है और भौतिक इच्छा भी है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वो कथा जो होती है वो पृथक है सामान्य भगवत कथाओं से। चंद्रागम में लगते तो साल में बार बार भगवत कथा आयोजित होते हैं, नहीं? अब बड़े बड़े बाहर से बड़े बड़े कथाकार आते हैं। तो इस जिस प्रकार मैं अभी कहता हूँ तो उस प्रकार वे नहीं कहते, वो भगवत की कहानियां कहते हैं और उससे लोग की पुण्यार्जन होते, पुण्य उससे पुण्य मिलते, क्योंकि वे भौतिक पुण्य मिलते, उसमें भक्ति भी है और कर्म का अभिलाष दोनों मिश्रित होते। परंतु उससे भक्ति का वास्तविक प्रदान नहीं मिलते। भक्ति का वास्तविक प्रदान क्या है? भक्ति, भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति और साधना भक्ति से प्रेम भक्ति मिलते हैं। तो वो साधना भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य होने चाहिए। ये सब रूप गोस्वामी की शिक्षा है। इस वचन ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, ये सब रूप शिक्षा का अध्याय चैतन्य चरितामृत में है। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए और चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार श्री रूप गोस्वामी अनेक अनेक भक्ति ग्रंथ रचना किया, शास्त्राधारित, जिनमें मुख्य विशेषकर साधक भक्ति साधकों के लिए मुख्य भक्ति रसामृत सिंधु है, जिसमें विषय है शुद्धा भक्ति। तो शुद्धा भक्ति क्या है? उस व्यक्ति जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की इच्छा नहीं है और मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, जिसमें केवल वही इच्छा है कि कृष्णार्थ ही खिल चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। तो अज्ञात सुकृति करने से अमानव शरीर में और मानव शरीर में भी अज्ञात सुकृति मिलते हैं। जैसे कुछ कितने 20 साल के पहले ऐसे भारत का प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव, और कितने साल के पहले किसी का याद है? 27 साल के पहले। और पूरे दुनिया में सब न्यूज़पेपर में बार बार नरसिम्हा नाम आया था, तो सब लोग जो पढ़ते थे नरसिम्हा राव, भगवान का नाम उच्चारण किया है। और ऐसे कितने साल, 20 साल के पहले अमेरिका में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था और एक कैंडिडेट का नाम अल गोर था, और सभी भक्तों चाहते थे कि अल गोर तो प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि उससे सब लोग गौर कहेंगे। गौर चैतन्य महाप्रभु का नाम है। लेकिन नहीं मिला, चीटिंग से बुश आया था। तो ऐसे हरि नाम कहना दूसरा विषय या वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करने के लिए भी किसी ना किसी प्रकार से यदि हम भगवान का नाम लेते उससे सुकृति होते, अज्ञात सुकृति। सब लोग जो नरसिम्हा राव का नाम उच्चारण किया वो सब अज्ञात सुकृति में। तो आप सब कल वो प्रोग्राम में थे, नाटक अजामिल का नाटक आप सब देखते हैं। तो पूर्व काल में भारत की संस्कृति में वो सब नवजात शिशुओं को ऐसा नाम देना था, नारायणा, गोविंदा, रुक्ष्मणी, द्रौपदी, और आजकल किस प्रकार नाम, डिंपल, पिंकी, और क्या है वो राहुल, भगवान का नाम रखना चाहिए, जिससे अजामिल जैसे हम अवसर मिलेंगे मृत्यु का समय भगवान का नाम स्मरण करना। और जीवन में भी हम बार बार सुनेंगे नारायण नारायण नारायण। और माताएं जो बच्चे को पुकारते हैं, हे नारायण नारायण। तो इस प्रकार दूसरा व्यक्ति को संबोधन करके भी भगवान का नाम हम कीर्तन करते और सुनते, तो इस प्रकार सुकृति होती है, ज्ञात या अज्ञात। और ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में वो सुकृति भक्ति सुकृति संचित होते हैं। जैसे यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं पूरा फैमिली लेके, तो बैंक में पैसा डालना है और काफी पैसा मिल के आप अमेरिका जा सकेंगे। जब तक काफी पैसा नहीं है इसलिए तो तब तक आप नहीं जा सकेंगे। तो इस प्रकार जब हृदय में काफी सुकृति है तो मन भक्ति से आकृष्ट हो जाएगा। और इसलिए एक व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने से आकृष्ट होंगे और दूसरा व्यक्ति तो नहीं। तो जो इस प्रकार भाग्यवान है, भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय में है, भगवान देखते हैं कि अभी ये जीव जो अनादिकाल से मेरे से पृथक पृथक रहते हैं, अभी प्राय प्रस्तुत है भक्ति करने के लिए। तो उस समय भगवान व्यवस्था करते हैं जिससे वो व्यक्ति सद्गुरु के पास आ सकते, और गुरु से ऐसा व्यक्ति भक्ति लता बीज मिलता है। भक्ति भक्ति लता इसका वर्णन होगा इस अध्याय में, चैतन्य चरितामृत का अध्याय में, कि लता एक प्रकार वनस्पति है ना, तो इसका खुद का यथेष्ट बल नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो आश्रय लेते एक बड़ा वृक्ष पर और इस प्रकार ऊपर जा सकते। तो इस प्रकार भक्ति लता जिनके हृदय में भक्ति लता है वो जीव का स्वयं का बल नहीं है भगवान के पास जाना, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है माया, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरात्यया, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है। हमारा स्वयं का प्रयास है हम माया का बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेथम तरंती थे, जो मुझ में शरण लेते, कृष्ण कहते, तो माया से मुक्त हो सकते। तो इस प्रकार यदि हम सब जो जा रहे हैं तो सुनिए सुनिए हरे कृष्णा, आप प्रसाद लेके जाइए, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। प्रसाद लेके जाना है, एक सख्त नियम है। तो जो कृष्ण के आश्रय में लेते हैं तो भगवान कृष्ण की सहायता से माया से मुक्त हो सकते। और कृष्ण का आश्रय कैसे मिलता है? कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु का माध्यम से आश्रय लय भजे कृष्ण थारे नाही त्याजे। जो कृष्ण के प्रतिनिधि सद्गुरु के आश्रय में आते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति को त्याग नहीं करते, अर्थात भगवान कृष्ण वो व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो भक्तिलता बीज है, वो प्रेरणा, वो इच्छा भक्ति करना। किस प्रकार भक्ति? भक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वो भक्तिलता बीज कैसे पुष्ट होते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, उसका वर्णन होगा इस अध्याय में। उस वो भक्ति लता को जल देना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन भक्ति करना। तो ये सब विषय बहुत विस्तार है। अभी मैं कैसे एक जीव कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते उसके बारे में बोला। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलते, ये भक्ति का रहस्य है। हरे कृष्णा। और जानकारी के लिए आप नियमित रूप से यहाँ आए और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें अपना घर पर पाठ कीजिए, और इस प्रकार आपकी भक्ति लता की वृद्धि हो जाएगी। हरे कृष्ण।
अगर कई बार ऐसी महिमा को सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सोचेगा ऐसा कि ठीक है मुझे तो अभ्यास करती है और फिर आप कर्म करते हैं ऐसा, तो ऐसे व्यक्ति की क्या स्थिति होगी?
क्या नहीं समझे, क्या बताए?
इसे नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं कि ऐसे
बार बार नाम की महिमा सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते,
और
नहीं नहीं जो बार बार सुनते हैं तो विश्वास करते हैं, क्योंकि क्यों बार बार आएंगे सुनने के लिए? केवल विश्वासी लोग आते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं तो एक बार आते हैं और आए ये सब बकवास क्या है, मैं सिनेमा जाता हूँ, ऐसे ही सोचते। बार बार सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा।
बाद
में पाप करते हैं, तो ये यही नाम तत्व की चर्चा है। तो नाम के बल से यदि हम पाप करेंगे वो नाम अपराध होते हैं, और उससे वो नाम की कृपा हम नहीं मिलेगी। यदि हम सोचते कि नाम कहने से हम भगवान की कृपा मिलते, इससे मैं पाप करूंगा उसके बाद हरे कृष्ण कहूंगा और उससे मैं पाप से मुक्त होऊंगा, तो ऐसे सोचना बड़ा पाप होता, ऐसा नहीं चलेगा। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन वो लंबी चर्चा है, तो अभी नहीं। नारो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिः।